نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. نماز نبوی ڈے 18 ہے ہمارا اور اس میں آج ہم سفر کے مسائل یعنی سفر کیا ہے کیسے سفر کی باتیں کچھ تو کر چکے اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم کوئی استاد نہیں بن رہے, ہم کوئی باہر دوسروں کو فتوے نہیں دے رہے, اور اللہ سے یہ دعا کرتے کرتے ہم اس سفر کو آگے لے جائیں گے کہ جو چیز زیادہ راجے ہے, راجے سمجھ کے آپ پیچھے بھی ڈومیننٹ ہے, جس کے دلائل زیادہ اوتھینٹک ہے, ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے دے. رہ گئی پچھلی زندگی میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اس کا کیا, وہ اللہ پہ ڈال دیجئے. ہمارے دین کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے, الا ما قد سلف, جو گزر گیا اس کو چھوڑ دیجئے. تو ہمارا دین یہی سکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے علم کی طرف اور اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آئے, اور ہم بغیر کسی جھگڑے اور بحث میں پڑے اس دین کو سیکھنے والے بن جائیں. تو سفر کے بارے میں جو چیز ابھی تک ہم نے دیکھی تھی وہ کیا تھی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نمازوں کو مختصر کیا. تین نمازوں میں قصر ہے, ظہر, عصر اور عشاء میں. فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی دو اور تین ہیں. دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ سفر کی مسافت, تین ڈفرینٹ رائے تھی جس میں سب سے اسٹرانگ جس پہ تینوں کا اتفاق ہے وہ تین دن کی ہے, کیونکہ 14 اور 19 بھی ان تین میں سے گزر کر ہی جاتے ہیں. اب ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ کیا ہے, کس دوران سفر سنتوں کا کیا کیا جائے, کیونکہ ہم سفر کے دوران جب فرض نہیں پڑھتے ٹھیک ہے, تو پھر ایک سوال ہے کہ سنتوں کا کیا کیا جائے. آج ہم انشاءاللہ اس سے بات شروع کریں گے, آج ہم اس کو بھی پورا کریں گے, اور آگے جمعے کی نماز اور اس کے مختلف مسائل اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. اور ایک چیز یہ کہ سفر میں ہم نے جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی سیکھ لی. وقت شروع ہو چکا ہے ظہر کا, تو ظہر بھی پڑھ لیں اور عصر بھی پڑھ لیں دوران سفر, تو اس کو جمع تقدیم کہیں گے. ظہر کے وقت سے کچھ عرصہ پہلے ہی سفر شروع کیا تھا, ابھی رستے میں ہے کہ ظہر کا وقت چلا تو بھی نہ پڑھیں, تھوڑا آگے جا کر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیپ لیں, تو عصر بھی پڑھ لیں اور ظہر بھی پڑھ لیں. اس میں کیا کیا کہ آپ نے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا اور عصر کی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا ٹھیک ہے, کر لیں تو بھی بہتر ہے. اور پھر بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو خطرے کے ساتھ تھی, اور صحابہ کے ہم نے دلائل بھی دیکھ لیے کہ جب بالکل امن تھا اس وقت بھی کیا گیا, اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں ایک تحفہ دے دیا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس بات کو کہ سفر میں سنتوں کا کیا معاملہ ہوگا ٹھیک ہے, کیونکہ سنتیں ایک نماز کا حصہ ہیں, عام طور پہ بھی ہم پڑھتے ہیں اور سفر کے اندر تو نمازوں کا ہے. تو پڑھ لیجئے, سن لیجئے کہ سفر میں سنتیں معاف ہیں. حفص بن عاصم رحمہ اللہ سے روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا, اے میرے بھتیجے, انداز دیکھیے جیسے ہمارے ہاں بیٹا بیٹا کہتے ہیں بیٹی کہتے ہیں نا, تو ایج کے اعتبار سے لوگ پھر اپنے بچوں کو اسی طرح سے پکارتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, مراد یہ ہے کہ میرے بیٹوں جیسی عمر والے, تو عرب لوگ بیٹے کو بھتیجا کہتے تھے یا میرے بیٹے ٹھیک ہے. کیا کہا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا, مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی, اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفر کرتا رہا ٹھیک ہے. ان سب حضرات نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرما لیا, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اصول یاد رہے گا تو انشاءاللہ نمازیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اور روایت ہے یہ صحیح بخاری کی 1101 اور 1102, اور صحیح مسلم کی روایت ہے 689 ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سفر میں سنتیں معاف ہیں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ سفر میں جلدی سے جو کام تمہیں کہا دیا گیا ہے کرو, اور پھر واپس آ جاؤ. क्योंकि जितना ज़्यादा सफ़र में इंसान स्टॉप ज़्यादा लेगा, उतना ज़्यादा वो सफ़र लंबा होता जाएगा, और इस्लाम में सफ़र बग़ैर किसी वजह के करना, सफ़र की हालत में रहना पसंदीदा नहीं है, और मकसद पूरा हुआ तो घर आना चाहिए। ठीक है, क्या मालूम हुआ कि सफ़र में सुन्नतें, नफिल सब माफ़ हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मैदाने मीना में 2 रकतें नमाज़े कसर पढ़कर अपने बिस्तर पर चले जाते थे, यानी सफ़र में जब होते, और मीना में देख लीजिए कितना करीब है मक्का से, लेकिन वहाँ भी 2 रकतें कसर पढ़कर बिस्तर पर जाते। हफ्स रहमहुल्ला कहते हैं कि मैंने कहा, चचा जान, अगर इसके बाद आप 2 रकतें सुन्नत पढ़ लिया करें तो क्या हर्ज है? जवाब सुनिएगा। फरमाया, अगर मुझे ये करना होता तो फ़र्ज़ नमाज ही पूरी कर लेता, यानी फिर फ़र्ज़ नमाज पूरी पढ़ लेता, फिर ये क्या ज़रूरत है? यानी वो देखिए ना, जवाब कितना प्यारा है, इल्लत ख़त्म हो गई ना, जल्दी करनी है इसलिए छोटी पढ़ ली, तो अगर सुन्नतें भी पढ़नी थी तो बेहतर था कि फ़र्ज़ उतने रहने दिए जाते, यानी 4, और सुन्नतें माफ़ कर दी जाती। तो कितनी बड़ी दलील है इस बात की, और ये रिवायत है सही मुस्लिम में 694। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफा तशरीफ़ ले गए तो एक अज़ान और 2 इकामतों से नमाज़े मगरिब और नमाज़े इशा जमा की, और दरमियान में सुन्नतें नहीं पढ़ी। तो ये क्या हुई, कौन सी जमा थी? सोचिएगा, मगरिब और इशा जमा की, ठीक है, बीच में सुन्नतें नहीं। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि मगरिब के वक्त में ईशा पढ़ी या ईशा के वक्त पे मगरिब, तो बहरहाल ये जमा तकदीम या ताखीर में से कोई भी एक हदीस हो सकती है। ठीक है, यानी बात वाज़ेह हो गई, यानी सुन्नतें नहीं पढ़े। अब लोग इस पे सवाल करें, दिल नहीं मानता, फारिग बहुत हैं, घर में तो काम ही बहुत होता है, तो हम तो बाहर गए हुए हैं और कुछ भी नहीं था, तो चलो नमाज़ पढ़ते, ये आपकी मर्ज़ी है, अल्लाह ने ये तोहफ़ा दिया, एक हुक्म दिया, कोई ले लीजिए तो ठीक है। एक असूल लिख लें, कभी कभी नेकी करना अजर तो है, ना करना उससे भी ज़्यादा अजर होता है। ये भी असल में हमें सिखाने के लिए और हमारे अंदर एक तंजीम पैदा करने के लिए अल्लाह ताला का तरीका है। ठीक है, अब हजर में 2 नमाजों को जमा करने का मामला, आप में से भी किसी सिस्टर का कल सवाल था कि सफर की जमा तो समझ आ गई, क्या हजर? हजर से मुराद वो होता है सफर का उलट, जैसे मैं और आप अपने अपने घरों में होते हैं, हाजिर से हजर है, अपनी अपनी जगहों पे हम मौजूद हैं, तो फिर इस सूरत में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो आइए इसको पढ़ लें, इसकी जो इस्तिस्नाई सूरतें इंशाल्लाह वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जोहर और असर को जमा करके पढ़ा, हालांकि वहां दुश्मन का कोई खौफ था ना सफर की हालत थी। रावी जो अबू जुबैर हैं कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर रहमहुल्ला से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया था? सईद ने जवाब दिया, जिस तरह तुमने मुझसे दरियाफ्त किया है, इसी तरह मैंने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से पूछा था, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आप अपनी उम्मत को दुश्वारी में नहीं डालना चाहते थे। रिवायत है सही मुस्लिम की 705। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी ने मदीना में जोहर और असर जमा की, दुश्मन का खौफ नहीं, सफ़र की हालत भी नहीं थी, तो ये पूछने का ऐसा क्यों किया? जिस तरह के पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने ये जवाब दिया। ठीक है, अभी पूरी बात सुनिए, फिर बात वाजे होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के खौफ और सफ़र के बग़ैर जोहर और असर को और मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ा। अभी सब्र से सुनते जाए, मुझे पता है बहुत उछल रहे होंगे कि ये तो कभी नहीं सुना, हाँ बेचैनी हो रही होगी ना अंदर। तो ये रिवायत है सही मुस्लिम की 705। ठीक है, अगली रिवायत भी लेते हैं। अब्दुल्ला बिन शकीक रहमहुल्ला से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने बुसरा में, इराक़ का शहर है बुसरा, हम इसको अमूमन बसरा कहते हैं, असर के बाद हमें खुतबा देना शुरू किया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और सितारे चमकने लगे। किसी ने कहा कि नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है, उन्होंने फरमाया मुझे सुन्नत ना सिखाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोहर और असर और मगरिब इशा मिलाकर पढ़ते हुए देखा है। अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं कि मुझे शुबा पैदा हुआ, मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाते थे और सबसे ज़्यादा हदीसें भी अबू हुरैरा से ही हैं, तो इन्होंने वेरिफिकेशन चाही कि ऐसा क्यों हुआ कि इब्ने अब्बास बुसरा में असर के बाद खुतबा दे रहे हैं, सूरज गुरूब हो रहा है, इवन सितारे भी चमकने लगे, और वो खुतबा नहीं छोड़ रहे, यानी दर्स का प्रोग्राम है, जिसको अपनी जबान में कह लें कि सबक पढ़ा रहे, क्लास ले रहे, मगरिब का वक्त भी हो गया और ये पढ़ाते ही जा रहे हैं। तो कुछ ने कहा कि भाई मगरिब का वक्त है, जैसे हमारे भी बहुत सारे लोग फिर ऐसे वक्तों पे बेचैन होने लगते हैं ना, क्योंकि आदत होती है नमाज़ पढ़ने की। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह के नबी को देखा है कि जोहर और असर और मगरिब और ईशा पढ़े, यानी इस सूरत में इन्होंने क्या किया कि मगरिब को डिले किया और आगे जाकर ईशा पे पढ़ी होगी, और अपना जो खुतबा था या जो दर्स था जो आप पढ़ा रहे थे वो जारी रखा। अब इन सारी चीज़ों को समझिए, बहुत सारे आपके पास मुख्तलिफ क्ल्यूज़ आ गए। इन रिवायात से मालूम हुआ कि शदीद ज़रूरत और शरई उज़र की बिना पर हजर में कभी कभार, लफ्ज़ लिखिए कभी कभार, मसला यह कि हमारा कभी कभार हर बार बन जाता है, कभी कभार जमा बैनुस्सलातैन, सलातैन लिखिएगा, तीन ना लिखिएगा, दो नमाजें, ये नहीं कि इकट्ठी चार पांच नमाजें रात को जाके घर में पढ़ लें, नहीं फिर वो सलातीन हो जाएंगी। दो नमाजें जमा करना जायज़ है, लेकिन ये याद रहे कि बगैर उजर के ऐसा करना या इसे मामूल बना लेना गलत है। यानी नागुजीर, नागुजीर कहते हैं जहां से भाग ना सके, फारसी का लफ्ज है गजीर, गजारा भागना, तो मुराद जिसे भाग नहीं सकते, मीन इम्पॉसिबल है वो काम। यानी नागुजीर किस्म के हालात, मुराद शरई उजर में हालते क्याम में भी दो नमाजें जमा करके पढ़ी जा सकती हैं, ताहम शदीद जरूरत के बगैर ऐसा करना जायज नहीं। जैसे कारोबारी लोगों का आम मामूल है कि वो सुस्ती या कारोबारी मसरूफियत की वजह से दो नमाजें जमा कर लेते हैं, ये सही नहीं बल्कि सख्त गुनाह है। वरना तो देखिए फिर नमाजें ही तीन होती, दो इकट्ठी दो पढ़ लो, और आज एक फिरका है कि जो मगरिबैन और जोहरैन के नाम पे एक एक करके और यानी कम नमाजें पढ़ते हैं, तो ऐसा करना जान के करेंगे तो गुनाह होगा। नागुजीर हालात के सिवा हर नमाज उसके मुकर्रर वक्त पर ही पढ़नी चाहिए। अब आप जरा से इस पे सोचिए, यहाँ पे मौजू पूरा हुआ जमा करने का और सफर का भी। मैं दोहरा देती हूँ इस चीज को कि सफर में तो है लेकिन खजर में भी बहुत ऐसी मजबूरी जिससे निकल ना सके। देखिए मैं मिसाल दे रही हूँ, एक कह लीजिए कि न्यूरोलॉजिस्ट है, ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा है और ब्रेन खुला पड़ा है और उसमें 2 घंटे लग गए, और ऑपरेशन का वक्त ऐसा है कि उसमें जोहर आ गई या फिर असर आ गई, कोई भी चीज़ जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या करेगा, मरीज को छोड़ के नमाज पढ़ने जा सकता है? ये ऐसी कैफियत है। आप लंदन की ट्रैफिक के रश में ऐसा फंसे कि मगरिब शुरू तो थी, अंधेरा होने लग गया, क्या करेंगे, अब जाकर ईशा के साथ मगरिब पढ़ लेंगे ना, ये है मतलब। आदत नहीं, नमाज छोड़ने से बेहतर है कि आप पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं आता कि आप बाजार जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि मेरी असर कज़ा हो जाएगी तो मैं जोहर के साथ पढ़ लूँ, ये बिल्कुल नहीं होगा, और इसी तरह की बाकी चीज़ें, ठीक है। एक छोटी सी और सूरत है, वो भी चले इधर रिकॉर्ड हो जाएगी, शायद किसी को फ़ायदा हो। बास लोगों का घर कहीं और होता है और जॉब के लिए कहीं और जाते हैं, जैसे कुछ सिटीज़ ऐसे हैं, मसलन आप न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रहने वाले मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि बहुत सारे लोग जो रहते न्यू जर्सी में लेकिन जॉब न्यूयॉर्क में करते हैं, फैमिलीज़ को न्यूयॉर्क से निकाल कर न्यू जर्सी क्यों रखा, बहुत सारी वजूहत हैं कि वहाँ घर सस्ते हैं, ज़्यादा मतलब कंजस्टेड नहीं है, ठीक है। अब वो रोज़ निकलते हैं घर से अपने बिजनेस के लिए, ऑफिस में या जॉब पे वो न्यूयॉर्क जाते हैं और न्यूयॉर्क से फिर वापस आते हैं, क्या करेंगे न्यूयॉर्क में, रोज़ जो जा रहे, रोज़ सफ़र है उनका, ये तो अल्लाह की तरफ से उनको एक तोहफा है, ठीक है। अच्छा किसी का हाल यह है कि वीकेंड कहीं गुजारा, वीकडेज कहाँ, एक घर इधर है कुछ उधर रहने का बना, बस सिंपल रीज़न। देखिए साहबा ने ऐसे सवाल नहीं किए थे, कुछ तो सिर्फ सपोज क्वेश्चंस होते हैं। कभी मुझसे कोई ऐसा सवाल करे तो मैं कहती हूँ ये आपका इश्यू है, नहीं किसका, मैं कहती हूँ अच्छा उनसे कहेगा वो पूछे, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।